नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाने की घोषणा की। संविधान निर्माताओं के योगदान के स्मरण में नई दिल्ली में पदयात्रा निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश के 2,00,000 युवाओं को पक्की नौकरी देने का निर्णय लिया है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है। तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन विश्व भर में 30 लाख सहकारी उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 1 बिलियन से अधिक सहकारी सदस्य हैं। वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन भारत सरकार तथा भारतीय सहकारी संस्था अमूल तथा क्रिप्को के सहयोग से भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड कर रहा है। सम्मेलन का विषय सहकारिता से सभी के लिए समृद्धि का निर्णय है। ये सम्मेलन समेकित शांतिपूर्ण और सभी के लिए समृद्ध भविष्य निर्मित करने में सहकारी समितियों की भूमिका तलाशेगा। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाने की घोषणा की है। ये अभियान देश भर में कल शुरू होकर अगले वर्ष 26 नवंबर तक वर्ष भर चलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत की संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा कि संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा,
मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं का उत्साह और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान को देखते हुए मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब वो देश विकसित भारत होते रहे।
हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पदयात्रा भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में संविधान निर्माताओं के योगदान के स्मरण में आयोजित की गई। पदयात्रा से पहले केंद्रीय मंत्रियों सांसदों ओलंपिक एथलीटों युवाओं सहित सभी प्रतिभागियों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी ली। माई भारत नेहरू युवा केंद्र संगठन नेशनल सोशल सर्विस नेशनल कैडेट कोर और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। हरियाणा का राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कल आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे तथा उपस्थित शिक्षकों शोधार्थियों व विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश के 2,00,000 युवाओं को पक्की नौकरी देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आज हिसार के जाट महाविद्यालय में आयोजित सेठ छाजू राम की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा,
आने वाले समय के अंदर हरियाणा में 2,00,000 और युवाओं को हरियाणा सरकार में पक्की नौकरी देने का लक्ष्य हमने रखा है। इसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में 26,000 सरकारी नौकरियों का भर्ती का परिणाम इसका प्रमाण है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के एक समय के अंदर 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों में प्रदेश के 1,71,000 से अधिक युवाओं को बिना खर्ची व पर्ची रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि युवा रोजगार लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए आ गया है। उनकी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दानवीर सेठ छाजू राम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उनके आदर्शों पर चलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा,
हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा एजुकेशन पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज 20 किलोमीटर की परिधि में ही मिले, उसके लिए हरियाणा सरकार ने मजबूती से काम किया है। और मुझे गर्व है कि आज 10 वर्षों के बाद हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज हमारी बेटियों को वो मिल रहा है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं कक्षा में 90% अंक हासिल करने वाली छात्राओं के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तकनीकी व राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2025 से ही पूरी तरह नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार व सावित्री जिंदल भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हिसार में सूर्यनगर रेलवे फाटक पर बने पुल का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सेक्टर 14 व सूर्यनगर को जोड़ने वाले इस पुल पर 68 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। हिसार को समर्पित इस पुल के बनने से लोगों को जाम से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हिसार हवाई अड्डे के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन के लिए आएंगे, यहां से जल्द ही विमान उड़ान भरेंगे। हरियाणा में प्रदेश भर के नागरिक अस्पतालों में रोगियों को अलग अलग ओपीडी पर्ची बनवाने के झंझट से मुक्ति मिल गई है। अब उन्हें एक ही ओपीडी पर्ची पर सभी चिकित्सकों के उपचार की सुविधा मिलेगी। जीन नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया,
देखिए ई उपचार के माध्यम से जब भी पर्ची बनती है तो उस पर एक स्टिकर लगता है जिसमें किसी एक डॉक्टर के नाम से पर्ची बनती है, इस मरीज को इस डॉक्टर को दिखाना, इस कमरे में जाना है। लेकिन अगर उस डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन की जरूरत है तो वो उसको कंप्यूटर पर रेफर कर देता है। मरीज को बार बार पर्ची नहीं बनानी पड़ती और हमें सख्त दिशा निर्देश दोबारा से भी जारी कर देगी, मरीज की एक ही पर्ची बनेगी।
आम नागरिकों ने इसे सरकार की एक बेहतर पहल करार दिया है। अस्पताल में इलाज के लिए एक मरीज ने आकाशवाणी समाचार को इस पर प्रतिक्रिया दी।
सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, इसमें अब एक पर्ची से हम सभी डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि हमें आईडियो की पर्ची कटवाई हुई है, ऑर्थो की हमने पर्ची कटवाई हुई है, तो हम उस पर्ची से हम आई सर्जन को भी दिखा सकते हैं, डेंटल को भी हम दिखा सकते हैं, एक्सरे वगैरह में हम जा सकते हैं।
सरकार की इस पहल से मरीजों को बार बार कतार में लगने से निजात मिलेगी और उन्हें अलग अलग पर्ची का शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा, इससे उनके समय और पैसे की बचत होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने अक्टूबर में आयोजित करवाई गई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सेकेंडरी शैक्षिक पूरक परीक्षा का परिणाम 62.8% रहा, जबकि सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक पूरक परीक्षा का परिणाम 59.19% रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाने की घोषणा की। संविधान निर्माताओं के योगदान के स्मरण में नई दिल्ली में पदयात्रा निकाली गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का निर्णय लिया है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।